जैसे ही राघवेंद्र ने कहा, वैदेही की माँ ने उसके बाप का कत्ल किया है। वैदेही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इस बार चौंकने की बारी वैदेही की थी, क्योंकि राघवेंद्र ने उसके अतीत का वो पन्ना खोल दिया था जो उसके अलावा और किसी ने नहीं पढ़ा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम?
बस भी कीजिए वैदेही जी, राघवेंद्र ने मुस्कुराकर कहा। यहाँ कोई कैमरा ऑन नहीं है जहाँ आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करनी पड़े। आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि ये कोई बकवास नहीं है।
तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? वैदेही ने पूछा। हाँ, ये सवाल आपने वाजिब पूछा। वो क्या है ना वैदेही जी, अब हम इतने सीधे तो हैं नहीं कि आप हमारे घर पर आएंगी, हमारी प्यारी कुल्हाड़ी को चुरा कर ले जाएंगी और हम आपको सस्ते में जाने देंगे। आपने हमारी कमज़ोरी जान ली थी तो सोचा कि हम भी आपकी कमज़ोरी का पता लगा लें।
बहुत अच्छी बात है राघवेंद्र, वैदेही ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा। पता है तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है? तुमने मेरे जिस पास्ट के बारे में पता लगाया है उसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी पता लगाया है वो तुम्हें बर्बाद कर देगा।
इतना हवा में मत उड़िए वैदेही जी, आपकी माँ ने आपके पिता को मारा था, जेल जाना तो उनका भी बनता है।
लगता है आप अपना होमवर्क अच्छे से नहीं करके आए राघवेंद्र जी, या फिर आपके आदमियों ने पूरी बात बताई नहीं होगी। मेरी माँ को सज़ा दिलाने के लिए आपको भगवान के पास जाना होगा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही।
जैसे ही वैदेही ने बताया राघवेंद्र का मुँह उतर गया।
तुम झूठ बोल रही हो, उसने कहा।
अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें क्या बताया था?
यही कि आपकी माँ ने आपके पिता को मार डाला था।
और कुछ? वैदेही ने पूछा।
राघवेंद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर वैदेही ने कहा, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। चलो मैं बता देती हूँ। हाँ, मेरी माँ ने मेरे बाप को मार दिया था, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, हमेशा उनको मारने पीटने के बहाने ढूंढता। बाकी औरतों की तरह उन्होंने भी बहुत सहा, लेकिन जब बात मेरी आई तो उन्होंने उसे मार दिया।
आपकी ज़िंदगी की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ वैदेही जी, लेकिन मुझे नहीं हुआ। हाँ, मुझे अपनी माँ के जाने का अफसोस हमेशा रहेगा, लेकिन मेरे बाप के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था।
राघवेंद्र और वैदेही की जो मुलाकात गुस्से और एक दूसरे पर हाथ पैर चलाने से शुरू हुई थी, वो अब दर्द बांटने तक आ गई थी।
हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे बाबा ने मेरी आई को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके सामने किसी दूसरी औरत को लाकर अपनी बीवी का दर्जा दिया और अपनी बीवी को नौकरानी बना दिया, राघवेंद्र ने धीमी आवाज़ में कहा।
ओह, दैट्स सो सैड। आपके पिता ने जो भी किया वो गलत था, आप जानते हैं वो गलत थे, फिर आप क्यों उनके नक्शे कदम पर चलते हुए गलत कर रहे हैं?
वैदेही की बात सुनकर राघवेंद्र की नज़रें झुक गईं। वो खुद नहीं जानता था कि उसने ये जुर्म का रास्ता कब और कैसे पकड़ा। राघवेंद्र को चुप देखकर वैदेही ने फिर पूछा, अब जब अपने बारे में इतना सब कुछ बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि उस स्टूडेंट को क्यों और कैसे मारा?
पता नहीं, राघवेंद्र ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा। सत्ता और शक्ति का नशा ही कुछ ऐसा होता है वैदेही जी, कि यहाँ आपको कुछ भी गलत नहीं लगता। आप गलत करने के आदी हो जाते हैं और आपको उसमें मज़ा आने लगता है। कहते हैं जिस चीज़ को करने में मज़ा आए इंसान उसे बार बार करता रहता है।
क्या मैं आपके यहाँ पर आने का कारण जान सकती हूँ? आपको मेरा सच पता लग गया है, इसलिए आप मुझे मारने के लिए आए थे क्या? वैदेही ने पूछा।
सोचा तो यही था कि आपकी जान ले लेंगे, और कोशिश भी की थी, लेकिन पहली बार कोई बराबरी वाला मिला है, राघवेंद्र हंसकर बोला। हम आपको चैलेंज करते हैं, कल विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और उसके 5 दिन बाद हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे।
सपना काफी अच्छा देखा है आपने।
अरे, अभी आपने हमारा पूरा सपना सुना ही कहा है वैदेही जी, मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, ये तो तय है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले हम आपकी जान लेंगे, ये शपथ हम आज लेते हैं, राघवेंद्र ने अपने मूछों को ताव देते हुए भारी आवाज में कहा।
ये तो वक्त ही बताएगा, चलिए फिर मिलते हैं एक हफ्ते बाद, बोलते हुए वैदेही ने अपने दोनों हाथ जोड़े।
जवाब में राघवेंद्र ने भी अपने दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राघवेंद्र अपनी जीत को लेकर निश्चिंत था, क्योंकि त्यागी जी ने उसे रिपोर्टर के मामले को संभालने का वादा किया था। उसके जाने के बाद वैदेही राघवेंद्र के बारे में सोचने लगी। उसे मेरे मॉम डैड के बारे में कैसे पता चला होगा? उनके बारे में तो कोई नहीं जानता, फिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसे इन सब की जानकारी दे सकता है? वैदेही के चेहरे पर चिंता के भाव थे। साथ ही उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी माँ ने उसके पिता का खून किया था। रात के 1 बज रहे थे। वैदेही उस वक्त लगभग 12 साल की थी और अपनी माँ के साथ कमरे में सो रही थी। उनके घर की डोरबेल बार बार लगातार बज रही थी, उसी के साथ उसकी माँ जाग गई। बार बार डोरबेल की आवाज़ सुनकर वैदेही की नींद भी खुल चुकी थी।
मैं भी आती हूँ, शायद तुम्हारे पापा आए होंगे, तुम बाहर मत आना, वैदेही की माँ ने कहा।
जवाब में उसने हाँ में सिर हिला दिया। वैदेही की माँ वहां से बाहर आ गई। उनके जाने के बाद वैदेही भी कमरे के दरवाजे के पास आकर बाहर की तरफ देखने लगी।
सुरभि, सुरभि, मैं आ गया हूँ, बाहर से उसके पिता के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उनकी आवाज़ से साफ पता लग रहा था कि उन्होंने शराब पी रखी थी।
वैदेही की माँ सुरभि दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके पिता के साथ एक और आदमी मौजूद था, उसने भी शराब पी रखी थी। आपको इस वक्त अपने दोस्त को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था चिराग, सुरभि ने दुपट्टे से अपने नाक को ढक कर बोला, क्योंकि शराब की बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसकी बात सुनकर उसके पिता चिराग ने अपने साथ आए आदमी की तरफ देखा, जो उम्र में उससे थोड़ा बड़ा ही दिख रहा था। उन्होंने सुरभि से कहा, श, तुम चुप करो सुरभि, चलो अभी इनसे माफी मांगो। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे किस बात के लिए माफी मांगू? एक तो आप इतनी रात को शराब पीकर घर पर आए हैं, ऊपर से साथ में अपने दोस्त को भी ले आए। आप भूल रहे हैं कि वैदेही अब बड़ी हो रही है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी बेटी बड़ी हो रही है? अरे, अब तो उसकी गुड्डा गुड्डी से खेलने की उम्र भी बीतने वाली है। चलो तुम इन सबको छोड़ो और इनसे मिलो, ये बहुत ही महान आदमी है। इन्होंने हमारे डूबते बिजनेस को टेक ओवर करने का फैसला लिया है। वैदेही की माँ सुरभि ने उस आदमी की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। अच्छी बात है, लेकिन आप अपने बिजनेस पार्टनर को इस वक्त घर पर क्यों लेकर आए हैं? सही कहा, बिजनेस पार्टनर को इस वक्त घर लाने का सही वक्त नहीं है, लेकिन हमारे होने वाले दामाद को तो मैं घर पर बुला सकता हूँ ना। चिराग की बात सुनकर सुरभि सकते में आ गई। उसने एक नज़र फिर उस आदमी की तरह देखा जो कि उम्र में वैदेही के बाप से भी बड़ा था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, इसकी तो खुद के वैदेही से बड़ी बेटी होगी, और आप अपनी बेटी का हाथ? बोलते हुए सुरभि उस आदमी की तरफ मुड़ी और कहा, देखिए, मैं नहीं जानती कि मेरे पति ने आपसे क्या कहा है या क्या वादा किया होगा, लेकिन आप तो समझदार हैं। मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की है, आप एक बच्ची से शादी करने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन मैंने उसकी पूरी कीमत दी है, और मैं यहाँ कोई रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ, उसे ले जाने के लिए आया हूँ, उस आदमी ने बेशर्मी से जवाब दिया। चलो लेकर आओ उसे, चिराग ने नशे की हालत में कहा। सुरभि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम छोड़ो, मैं ही ले आता हूँ। वैदेही, वैदेही कहाँ हो तुम बेटा? बोलते हुए चिराग कमरे के अंदर बढ़ने लगा।
इन सबसे सुरभि का पारा हाई हो रहा था और चीजें उसके समझ से बाहर हो रही थी। सिर्फ वैदेही ही अब उसके जीने का एकमात्र सहारा थी, और उसके लिए वो कोई भी सही गलत फैसला उठाने से पहले एक पल भी नहीं सोचती थी। सुरभि दौड़कर चिराग के पीछे गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारे रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ, बोलते हुए चिराग ने सुरभि को दूसरी तरफ धक्का दिया। उसने झट से कमरे का दरवाजा खोला और वैदेही का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ देखने लगा। मम्मा, बचाओ, वैदेही चिल्लाते हुए रो रही थी। चिराग उसे पकड़कर उस आदमी के पास ले जा रहा था। सुरभि को कुछ नहीं सूझा तो वो दौड़कर किचन में गई। बिजनेस की हालत खराब होने की वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति कोई खास अच्छी नहीं थी। उसे सामने स्टोव के पास पड़ा मिट्टी का तेल दिखाई दिया। उसने बिना सोचे समझे कैन को उठाया और हाथ में माचिस लेकर बाहर आई। ये लो अपनी अमानत, अब इसका जो करना है करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, चिराग ने वैदेही को उस आदमी को सौंप दिया था। वैदेही ने उस आदमी को धक्का दिया और भागकर अंदर कमरे में चली गई। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। तब तक सुरभि भी बाहर आ चुकी थी। उसने मिट्टी का तेल चिराग के ऊपर उड़ेल दिया और बिना सोचे समझे जलती हुई तीली उस पर डाल दी। अगले ही पल वहां आग धधक रही थी, जिसमें चिराग चिल्लाते हुए सुरभि को भला बुरा कह रहा था। वो आदमी डरकर वहां से भाग चुका था। बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वैदेही दौड़कर बाहर आई तो उसने अपने पिता को जलता हुआ पाया, जिसके पास बैठकर सुरभि जोर जोर से रो रही थी। उसने वैदेही को देखा तो उसे कसकर सीने से लगा लिया। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये आदमी किसी का पति और पिता कहलाने के लायक ही नहीं था, सुरभि वैदेही को सहलाते हुए सांत्वना दे रही थी। उस दिन के बारे में सोचकर वैदेही की आंखों में आंसू थे। उसने खुद को संभाला। उस दिन के बारे में सोचकर ही रूह काम जाती है। अगर आपने मेरे लिए वो कदम नहीं उठाया होता तो मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा होता, मैं जिंदा भी होती या नहीं। मैं आपको अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई माँ, लेकिन मेरी इस अच्छी जिंदगी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको ही जाता है। हर वैदेही इतनी लकी नहीं होती कि उसकी जिंदगी में कोई सुरभि हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी जैसी और लड़कियों को ढूंढ सकूं और उनकी जिंदगी में सुरभि बन सकूं। आपने मेरे लिए जो किया, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, वैदेही भ्यौत से कहा। उसकी माँ ने उसके लिए जो भी किया वो सोचकर वैदेही के इरादे और भी मजबूत हो जाते थे। थोड़ी देर पहले राघवेंद्र से मिली चुनौती को स्वीकार करते हुए वैदेही ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया।